أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، أما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی نماز میت کے طریقے کے بارے میں، غسل کے طریقے کے بارے میں، کفن کے طریقے کے بارے میں، اور نماز میت کے کچھ شرائط بیان کیے تھے، جس میں ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ نماز میت پڑھنے والے کی جگہ جو ہے وہ جہاں میت رکھی ہوئی ہے اس سے بلند یا نیچی نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر جو ہے وہ جنازہ یا جنازہ جس تابوت میں ہے، وہ تابوت جو ہے وہ زمین کی سطح پر رکھا ہوا ہے، اور انسان جو ہے وہ زینے پر کھڑا ہو کر نماز پڑھے، یا اپنے نیچے دو چار اینٹیں رکھ لے اس کے بعد نماز پڑھے، یا کسی پتھر پر کھڑا ہو کر نماز پڑھے جس سے جو ہے وہ اونچا نیچا ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اگر تھوڑی بہت اونچی نیچی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر زمین اونچی نیچی ہے، تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ یہاں پر جو ہے وہ بعض فقہا زمین کے سلسلے میں، یعنی جہاں پر نماز پڑھنے والا نماز میت پڑھ رہا ہے اس کے سلسلے میں، یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ زمین جو ہے اس کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ زمین غصبی نہیں ہونی چاہیے، یعنی یا تو خود اپنی زمین ہو جو نماز پڑھ رہا ہے یا میت کی، یا جو ہے ایسی زمین ہو کہ جس کے مالک نے نماز پڑھنے کے لیے اجازت دی ہو. یہ شرائط تھے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کیے. اب یہاں پر جو ہے وہ چند احکام نماز میت کے، اور پھر آداب آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے احکام میں پہلا حکم یہ ہے کہ نماز میت میں جو تکبیریں، پانچ تکبیریں جو کہی ہے جاتی ہیں، اور چار تکبیروں کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرے کر کے لگاتار پڑھتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک تکبیر کہی، اس کی دعا پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے رک گئے، پھر دوسری تکبیر کہی، پھر دعا پڑھی، پھر رک گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لگاتار ان کو پڑھا جائے اس طریقے سے کہ کہا جائے کہ ہاں نماز میت پڑھی جا رہی ہے، یعنی نماز کی صورت سے خارج نہ ہو جائے. دوسرا حکم یہ ہے کہ نماز میت کو جماعت سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر نماز میت کو جماعت سے پڑھا جائے تو امام کے ساتھ ساتھ جو امام کی اقتدا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تکبیریں خود، یعنی خود اپنی زبان سے بھی تکبیریں کہیں، اور تکبیروں کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو بھی پڑھیں. یہ نہ سوچیں کہ جس طریقے سے واجب نمازوں میں ہم کو جو ہے وہ الحمد اور سورہ نہیں پڑھنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ان دعاؤں کو پڑھنا پڑے گا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص میت کی نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باوضو ہو. واجب نمازوں میں، مستحب نمازوں میں اگر ویسی انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں وضو شرط ہے، اگر غسل واجب ہے تو غسل کرنا شرط ہے، یا اگر تیمم واجب ہے تو تیمم کرنا شرط ہے، لیکن نہ اس میں غسل کی شرط ہے، نہ وضو کی، نہ ہی تیمم کی. وہاں جو ہے ان نمازوں میں بدن پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، لیکن جو ہے وہ یہاں شرط نہیں ہے کہ بدن پاک ہو یا اس کا لباس پاک ہو، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں وہ شرط نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ بے وضو بھی ہے اور میت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. غسل واجب ہے لیکن نہیں کر پایا ہے، تب بھی جو ہے وہ نماز میت پڑھ سکتا ہے. تیمم واجب تھا لیکن نہیں کر پایا، میت کی نماز ہو رہی تب بھی پڑھ سکتا ہے. بدن نجس ہے، لباس نجس ہے، تب بھی جو ہے وہ میت کی نماز پڑھ سکتا ہے. یہیں پر جو ہے میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات جو ہے وہ یہ شبہ نظر آتا ہے کہ مثال کے طور پر غسل کے فوراً بعد جو ہے وہ کفن ہوا اور پھر نماز ہونے لگی، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ غسل دینے والے سے کہ ابھی تو آپ نے غسل میں سے میت بھی نہیں کیا، آپ کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے وہ صرف ایک شبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میت کا حکم وہ نہیں ہے جو عام نمازوں کا ہے، جو روزانہ کی نمازوں کا ہے، جو مستحب نمازوں کا ہے، نہیں. इसमें जो अगर इंसान ने गुस्ल नहीं भी किया है तब भी जो है नमाज मैयत को पढ़ सकता है। इसी तरीके से जो है वो एक और इश्काल ये पेश आता है कि जो गुस्ल दे देगा वो कफन नहीं पहना सकता है, ऐसा भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि उस पर गुस्ल वाजिब हुआ, ऐसा नहीं है कि उसके हाथ जो है वो नजिस हो गए, अगर किसी बर्तन को लगाएगा तो नजिस हो जाएंगे। उस पर गुस्ल वाजिब हुआ है और वो गुस्ल जो है वो शर्त जिन चीज़ों के लिए है उनसे पहले अंजाम देना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर नमाज के लिए तहारत शर्त है, कुरान को छूने के लिए तहारत शर्त है, जिन चीज़ों के लिए तहारत शर्त है उनसे पहले जो है वो गुस्ल करना वाजिब है। अगर वही शख्स जो है वो कफन पहनाता है तो कोई हरज नहीं है, या बगैर गुस्ल किए नमाज मैयत पढ़ता है तब भी कोई हरज नहीं है। अलबत्ता एहतियात मुस्तहब ये है, फुकहा फरमाते हैं कि एहतियात मुस्तहब ये है कि जिन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है वैसी नमाजों में, यानी अपनी पंजगाना नमाजों में या मुस्तहब नमाजों में, उनका यहाँ पर भी ख्याल रखें। यानी एहतियात मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद चौथा मसला यह है कि अगर मैयत ने जो है यानी मरने से पहले वसीयत कर दी है कि कोई शख्स यानी किसी शख्स को मुअय्यन कर दिया है कि वो जो है मेरी नमाज़ें मैयत पढ़े, तो एहतियात वाजिब ये है कि वो शख्स यानी जिसको मुअय्यन किया है मैयत ने कि वो शख्स जो है मेरे ऊपर नमाज़ पढ़े, उसके लिए एहतियात वाजिब ये है कि वो मैयत के वली से आकर इजाज़त ले नमाज़ पढ़ने की। और मैयत के वली के लिए भी एहतियात वाजिब यही है कि वो उसे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दें। मिसाल के तौर पर जो है वो खालिद जो है वो हालत एहतज़ार में है और उसने वसीयत कर दी है कि मेरी नमाज जनाजा जो है मसलन फला मौलाना पढ़ाएंगे, मैं वसीयत कर रहा हूँ कि उनसे मेरी नमाज जनाजा पढ़वाई जाए। तो अब जो है वो मौलाना जो है उनके लिए ज़रूरी है कि वो इजाज़त ले ले पहले मैयत के वली से। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान का इंतकाल हुआ है, उसका बेटा मौजूद है तो बेटे से इजाज़त ले ले, अगर उसका बाप मौजूद है तो बाप से इजाज़त ले ले, और उसके वली मैयत के वली पर भी वाजिब है कि वो मौलाना को इजाज़त दे दे जिनके बारे में वसीयत की गई है। इसके बाद जो है वो पांचवा और आखिरी मसला इस प्रोग्राम का ये है कि अगर ये चाहें कि चंद मैयतों पर नमाज़ पढ़ें, यानी कई मैयतें हैं, खुदा खास्ता जो है वो कई लोगों का एक साथ इंतकाल हो गया है एक गांव में, कई मैयतें हैं और सब पर नमाज़ पढ़ना है, तो बेहतर ये है कि अलग अलग पढ़ें। लेकिन अगर एक पर एक ही नमाज़ तमाम मैयतों के लिए पढ़ ली जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है और कोई इश्काल उसमें नहीं पाया जाता है। ये मसाइल थे जो तमाम हो गए हैं। अब हम आपके सामने यहाँ नमाज मैयत के आदाब, यानी चंद चीज़ें ऐसी कि जो नमाज मैयत में मुस्तहब हैं, वो आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो इंसान नमाज मैयत पढ़ रहा है वो जो है बातहारत हो, मुस्तहब है। देखें, हम फिर यहाँ कह रहे हैं, वहाँ मसले में कहा गया था कि लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो बातहारत हो, बावजू हो, गुस्ल किए हुए हो या तयम्मुम किए हुए, उसका बदन पाक हो, उसका जो है वो लिबास पाक हो, ये तमाम चीज़ें लाजिम नहीं है। लेकिन वहाँ भी कहा था एहतियात मुस्तहब है, यहाँ भी मुस्तहबात में उसको शुमार किया जा रहा है। दूसरे ये कि अगर मैयत जो है वो मर्द की है तो इमाम जमात या वो शख्स के जो उस मैयत की नमाज़ पढ़ रहा है उसको चाहिए कि वो मर्द की जो मैयत है उसके बीचों बीच खड़ा होकर, यानी ये सामने मैयत लेटी हुई है तो उसके जो बीच का हिस्सा होगा उसके सामने खड़ा होकर जो है वो नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर मैयत औरत की है तो उसके सीने के मुकाबले में खड़ा होकर नमाज़ पढ़े, ये मुस्तहब है। तीसरी चीज़ जो मुस्तहब है वो ये है कि पाबरहना यानी नंगे पैर होकर नमाज़ पढ़े, यानी जूते चप्पल जो पहने हुए हैं पहले उसको उतार दें उसके बाद नमाज़ पढ़ी जाए। और चौथी चीज़ ये है मुस्तहबात में से कि हर तकबीर के लिए जो है वो हाथों को बुलंद किया जाए। मिसाल के तौर पर सबसे पहली तकबीर कहना चाहते हैं तो हाथों को बुलंद करके अल्लाहु अकबर, उसके बाद जिक्र पढ़ें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर दोबारा कहें अल्लाहु अकबर, यानी पांच तकबीरें हैं। पांचों तकबीरों के लिए मुस्तहब ये है कि हाथों को बुलंद करें। उसके बाद जो है वो चौथी चीज़ जो मुस्तहब है वो ये है कि मैयत और नमाज पढ़ने वाले के दरमियान फासला बहुत कम होना चाहिए, यानी इतना कम फासला होना चाहिए कि अगर नमाज पढ़ते वक्त हवा चलने लगे तो नमाज पढ़ने वाले के कपड़े हवा से हिलकर मैयत या उसके ताबूत से टकराने लगे, यानी उससे जो है मिलने लगे, इतना नज़दीक होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आदाब में से, मुस्तहबात में से छठा मुस्तहब ये है कि नमाज मैयत को जमात के साथ पढ़ा जाए। सातवीं चीज़ जो मुस्तहब है वो ये है कि इमाम जमात जो है वो तकबीर और दुआओं को, यानी हर तकबीर के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है उनको बुलंद आवाज़ से पढ़े, लेकिन जो उसकी इक्तदा कर रहे हैं यानी मामूमीन वो आहिस्ता और हल्की आवाज़ में पढ़ें। इसी तरीके से आठवीं जो मुस्तहब चीज़ है वो ये है कि मामूम यानी जो इमाम की इक्तदा कर रहा है उसको चाहिए कि वो इमाम के पीछे खड़ा हो, यानी ऐसा ना हो कि यहाँ इमाम खड़ा है और उसी के बगल में जो है अगर मामूमीन भी खड़े हो जाए, इमाम के इधर भी सफ़ लगा ली जाए और उधर भी सफ़ लगा ली जाए। अलबत्ता ये हराम नहीं है, लेकिन मुस्तहब और बेहतर ये है कि मामूम के पीछे सफ़े लगाए जाएँ, मामून के यानी मुस्तहब ये है कि इमाम के पीछे सफ़े लगाए जाएँ, इमाम के बराबर में नहीं। यानी ये इमाम है, एक शख्स इमाम के पीछे खड़ा हुआ और अब जो शख्स इमाम के पीछे खड़ा है मुक्तदी, उसी के पीछे जो है वो उसी के बराबर में सफ़े लग गई हैं और उसके पीछे इसी तरीके से सफ़े लगी चली जा रही हैं, यानी गोया जो है वो इमाम के बराबर में ना होना बेहतर है। मुस्तहब यह है कि इमाम के पीछे सफ़े लगाए जाएं। उसके बाद जो है वो नवी चीज़ जो मुस्तहब है वो ये है कि नमाज पढ़ने वाले जो हैं वो मैयत के लिए दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके दुआ करें मैयत के लिए, और इसी तरीके से दूसरे मोमिनों के लिए भी दुआ करें। दसवीं चीज़ जो मुस्तहब है और आदाब में से है नमाज मैयत के, वो ये है कि नमाज मैयत को शुरू करने से पहले 3 मरतबा अस्सलाह कहा जाए, जिस तरीके से जो है वो आमतौर पर ईद या बकरीद वगैरह की नमाज से पहले कहा जाता है अस्सलाह 3 मरतबा बुलंद आवाज़ में, इसी तरीके से बेहतर है कि नमाज मैयत से पहले भी 3 मरतबा कहा जाए। उसके बाद जो 11वीं चीज़ जो मुस्तहब है वो ये है कि नमाज मैयत को ऐसी जगह पर पढ़ना चाहिए कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज मैयत के लिए जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। आमतौर पर जो है वो सभी इलाकों में, गांव, देहात, शहर वगैरह में जगह मुअय्यन होती हैं मैयत पर नमाज़ पढ़ने की, उन्हीं जगहों पर नमाज मैयत पढ़ी जाए और वहीं का जो है ऐलान भी कराया जाए। क्यों? इसलिए कि लोगों को आदत है कि नमाज मैयत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर इकट्ठा होते हैं। 12वीं चीज़ जो मुस्तहब है वो ये है कि अगर कोई ऐसी औरत जिसको खून हैज़ आ रहा है, पाक नहीं है, वो अगर जमात में शिरकत करना चाहती है, यानी नमाज मैयत की जमात में शिरकत करना चाहती है, तो उसको चाहिए कि वो एक सफ़ में अकेली खड़ी हो, उसके साथ दूसरे लोग ना खड़े हों, दूसरी औरतें उसके साथ ना खड़ी हों। मिसाल के तौर पर इधर जो है वो मर्दों की सफ़ें लगी हुई हैं, इधर ख़वातीन की सफ़ें लगी हुई हैं, एक एक सफ़ में कई कई आदमी हैं, तो बेहतर ये है कि अगर आगे वाली सफ़ों में जगह भी है तब भी ये औरत के जिसको जो है वो खून हैज़ आ रहा है और अभी ये पाक नहीं है, इसको चाहिए कि एक अलग पीछे जाकर सफ़ में खड़ी हो जाए अकेले। ये मुस्तहबात और आदाब थे जो हमने आपके सामने बयान किए। अब यहाँ पर जो है वो एक मकरूह भी बयान कर देते हैं और आज का प्रोग्राम यहीं पर तमाम हो जाता है, और वो मकरूह ये है कि नमाज मैयत को मस्जिदों में पढ़ना मकरूह है। यानी अभी तक जो हमने बयान किया वो मुस्तहबात थे, मकरूह क्या है? मकरूह ये है कि नमाज मैयत को मस्जिदों में पढ़ना, यानी मस्जिद में ना पढ़ना बेहतर है। लेकिन हाँ, एक मस्जिद ऐसी है कि जहाँ नमाज मैयत को पढ़ना मकरूह नहीं है, और वो मस्जिद जो है वो मस्जिदुल हराम है, उसमें नमाज मैयत मकरूह नहीं है। दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर तमाम होता है, अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे, और तब तक के लिए हम आपसे खुदा हाफिज़ चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।